ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। उषा की स्वर्णिम आभा से जिस तरह सारी सृष्टि की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार संपूर्ण विश्व में ज्ञान की आभा से धरा के कण कण को धर्म और अध्यात्म, विज्ञान की निर्मल धाराओं में छिपे रहस्यों को स्पष्ट करने वाली, यथा नाम तथा गुण को चरितार्थ करने वाली आदरणीय उषा दीदी जी हमारे बीच उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम सभी दीदी जी का स्वागत करते हैं। दक्षिण अफ्रीका के जाम्बिया में धार्मिक परिवार में जन्मी उषा दीदी जी आज पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैला रही है। आपका पूरा परिवार 1974 में ज्ञान में आया और भारत आने के बाद आपने 1980 में अपना पूरा जीवन मानवता के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। 1985 में भारत एकता युवा पदयात्रा बॉम्बे से दिल्ली का श्रीफल श्री कलश आपको ही सौंपा था। 1992 से अब तक कई बड़े संस्थानों जैसे गोदरेज, अमूल, ओएनजी, सेल, इफ्को आदि में सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप, तनाव मुक्ति शिविर आपने कराए। वर्तमान में आप मुख्यालय के शांतिवन परिसर, ज्ञान सरोवर आदि सभी स्थानों की प्रमुख वक्ता है। चीन, जर्मनी, आयरलैंड, यूएसए जैसे देशों में आपने ज्ञान की उषा बिखेरी है। उषा दीदी जी के नाम के साथ जुड़ा है रामायण, भागवत गीता का आध्यात्मिक रहस्य। उषा का हर रंग नारी के रूप का प्रतिबिंब है, शक्ति और करुणा का अनूठा संगम है। कभी सरस्वती, कभी लक्ष्मी, तो कभी दुर्गा का रूप है। हर युग में नारी ने दिया इस जग को स्वरूप है, इस जग को स्वरूप है। तो ऐसी त्यागी तपस्वी आदरणीय दीदी जी का एक बार फिर से हम करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। आज दीदी जी का विषय है योग के विभिन्न स्टेजेस, जैसे देही अभिमानी अवस्था, बीज रूप अवस्था, विदेही अवस्था। आदरणीय दीदी जी इन विषयों को, इन अवस्थाओं को स्पष्ट करेगी। अब हम सुनते हैं आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने हम बच्चों को आज की मुरली में बार बार ये पक्का कराया कि बच्चे तुम्हें देही अभिमानी बनना है। सर्विस भी करो तो देही अभिमानी स्थिति में रह करके करो, और जो देही अभिमानी होंगे उसकी निशानियां भी बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से स्पष्ट की। परंतु जब देही अभिमानी कहते हैं और दूसरी ओर आत्म अभिमानी स्थिति कहते हैं, तो दोनों में भी अंतर है। आत्म अभिमानी, देही अभिमानी, दोनों में भी फर्क है। क्या फर्क है? देही अभिमानी किसको कहा जाता है, आत्म अभिमानी किसको कहा जाता है? क्योंकि यही बेस है आगे की स्थितियों के लिए भी। जब तक ये बेस हमारा पावरफुल नहीं है, तब तक आगे की स्थिति को भी अनुभव करना मुश्किल होता है। तो उसको यथार्थ रीति अगर समझना है, तो जो एक स्टेप आगे है देह अभिमान। देह अभिमान को हम सभी जानते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर देह अभिमानी स्थिति में होता है तो बहुत जल्दी हम उसको कमेंट दे देते हैं, ये व्यक्ति बड़ा अभिमानी है, देह अभिमानी है, पता चल जाता है। कैसे पता चलता है? ऐसे कौन सी बातें दिखाई देती है जिससे पता चला कि वो व्यक्ति अभिमानी है, देह अभिमानी है, है ना? क्योंकि बाबा के बनने के बाद जो एकदम अशुद्ध स्वरूप है देह अहंकार, वो तो समाप्त हो जाता है, लेकिन जो उसके नीचे का स्टेप है वो है देह अभिमानी, और उससे नीचे एक और स्टेप है देह भान। ये दोनों में भी अंतर है। तो देह अभिमान किसको कहा जाता है? बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि देह अभिमान माना ही जहां कोई न कोई विकारों की बू आती हो, बदबू आती हो, तो उसको कहते हैं देह अभिमान। किसी के अंदर ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, या कोई किसी की निंदा करते हैं तो भी देखने वाला सहज भाव से कह देता है ये व्यक्ति अपने आप को बहुत कुछ समझता है, दूसरों को जैसे तुच्छ समझता है, इसलिए देखो कैसे किसकी निंदा कर रहा है, ग्लानि कर रहा है, बड़ा अभिमान है उसको अपना। तो इस तरीके से हम अभिमान को तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ ये व्यक्ति अभी। उससे नीचे जिसको कहा गया कि देह भान माना हमेशा अपने देह को कंफर्ट कैसे मिले, आराम कैसे मिले, उसके विषय में सोचना, बार बार ध्यान देह के तरफ जाना, मेरे देह को कोई कष्ट ना हो, मेरे देह को कोई तकलीफ ना हो। हाँ, किसी को थोड़ा सा जुकाम सर्दी आ जाता है तो भी उसको इतना कॉन्शियस हो जाता है कि अरे भाई मुझे कहीं कोई बीमारी ना लग जाए, इसको कहते देह भान, समझा? तो देह अभिमान माना जहां कोई ना कोई विकारों की बदबू आती हो, महसूस होता, वो वाइब्रेशन फील होते हो, और देह भान माना हमेशा कोई व्यक्ति जैसे बहुत ज्यादा अपनी देह के विषय में कॉन्शियस हो जाना। अब उसको छोड़ करके बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे तुम्हें आत्म अभिमानी देही अभिमानी बनना है। तो आत्म अभिमानी और देही अभिमानी में क्या अंतर है? आत्म अभिमानी माना जब हम कर्म से फ्री हो जाते हैं और जब योग में बैठते हैं तब हमने सारी कर्मेंद्रिय को समेट लिया, और उस वक्त आत्म स्थिति में जब स्थित हो जाते हैं, देह के भान से भी परे आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना, सारी कर्मेंद्रिय को समेट लेना और उस आत्मा के कॉन्शियसनेस में अपने आप को स्थित कर देना। आत्मा का कॉन्शियसनेस माना ही आत्मा के जो सात गुण है, जैसे कहा देह अभिमान माना कोई ना कोई विकारों का स्वरूप बन जाना, उसको देह अभिमान कहा। तो आत्म अभिमानी माना ही आत्मा के जो सात गुण है, पवित्रता, ज्ञान, प्रेम, शांति, सुख, आनंद और शक्ति, ये आत्मा के सात गुणों का स्वरूप बनना, उस स्वरूप में अपने आप को स्थित कर देना। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूं, और उस पवित्र स्वरूप में अपने आप को इस तरह से स्टेबिलाइज कर देना कि वो पवित्रता का जो वाइब्रेशन है वो चारों ओर फैलने लगे, हमारे चारों ओर शांति का, प्रेम का, खुशी का, आनंद का, ये वाइब्रेशन जब फैलता है, बैठे हैं योग में, उस वक्त आत्म अभिमानी स्थिति में है, तो जैसे कि ये सातों गुणों का स्वरूप बनते ही ये सातों गुणों के वाइब्रेशन फैलने लगते हैं। जिस तरह आज की दुनिया के अंदर ये कहा जाता है कि हर इंसान के चारों ओर एक ऑरा होता है, एक प्रभा मंडल होता है, जिसका देह अभिमान को लेकर के प्रभा मंडल होता है वो बहुत डार्क कलर का होता है। आजकल बहुत ज्यादा इसके ऊपर रिसर्च होने लगी है, और मुझे याद आता है कि अव्यक्त बाप दादा की एक मुरली आई थी कि बच्चे आगे चल करके ऐसे ऐसे विज्ञान के साधन निकलेंगे जहां से वो आपकी योग की स्थिति को भी देख सकेंगे कि ये देह अभिमान में है या ये आत्म स्वरूप में स्थित है। तो आजकल की दुनिया में ऐसे कैमरास निकले हैं कि जब व्यक्ति के चारों ओर के ऑरा को वो देख सकते हैं, उसका पिक्चर निकाल सकते हैं, और जितना डार्क कलर के ऑरास होते हैं माना वो देह अभिमान के तरफ ज्यादा है, और जितना लाइट कलर का ऑरा होता है उतना वो आत्म स्थिति की ओर अधिक है। क्योंकि जो आत्मा के सात गुण है उसके कलर लाइट है, एकदम लाइट कलर है। जैसे कहा पवित्रता का कलर जो है एकदम गोल्डन कलर होता है ना, तो वो ऑरा के रूप में दिखाई देता है उन लोगों को, और ऐसे कैमरास आए हैं जो खींचते हैं उसके चित्र। तो आत्म अभिमानी स्थिति माना अपने ऑरा को विकसित करना, ये सातों गुणों से ऑरा को विकसित करना। ये सात गुण अगर मैं और स्पष्ट करूं तो ये सात गुण माना जो इंद्रधनुष के सात रंग है लाइट कलर के, वो सात रंग होते हैं। तो व्यक्ति के चारों ओर जब सात रंगों का ऑरा होता है तो कहा जाता है कि ये व्यक्ति एकदम आत्म स्थिति की ओर, सोल कॉन्शियसनेस की ओर अधिक उसका ध्यान है या उसका पुरुषार्थ है। तो उसको कहते हैं आत्म अभिमानी स्वरूप, आत्मा के सातों गुणों का स्वरूप और उसका ऑरा विकसित करना। तो हम जब योग में बैठते हैं तो हम क्या करते हैं, बाबा को याद करने से पहले तो अपने आप को आत्मा समझो, जो हमेशा बाबा कहते हैं कि योग माना क्या, स्वयं को आत्मा समझ करके बाप को याद करना। तो पहले तो आत्म स्वरूप में स्थित होंगे तब बाबा की याद सहज होंगी, अगर देह अभिमान या देह भान की स्टेज में भी होंगे तो बाबा की याद सहज नहीं है, वहां मेहनत करनी पड़ती है बाबा को याद करें कि बार बार बाबा बिंदी खिसक जाती है, बार बार बाबा बिंदी खिसक जाती है, क्योंकि देह भान की अवस्था में हम है इसलिए तभी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं बाबा को मेहनत वाले योगी पसंद नहीं है, मोहब्बत वाले योगी पसंद है, अर्थात के स्वयं को जब आत्म स्वरूप में स्थित करते हैं तो प्रेम का स्वरूप बनते ही प्रेम का स्वरूप हमें बाबा के तरफ खींचता है, क्योंकि वो निस्वार्थ प्यार होता है। दुनिया का दैहिक प्यार जो है आकर्षण का होता है, दैहिक आकर्षण की ओर होता है तो वो अशुद्ध हो जाता है, लेकिन हमारा जितना आत्मिक प्यार होता है उतना वो शुद्ध होता है। तो जितना आत्मा प्रेम स्वरूप होती जाती है तो बाप के तरफ भी उसका लव बढ़ जाता है, जो आज बाबा ने मुरली में कहा कि प्रेम बाबा के साथ भी उसका बढ़ जाता है और बाबा को सहजता से याद कर सकते हैं। इसीलिए बाबा जब कहते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो, तो क्या आत्मा समझा नहीं है? अरे पहले दिन हम बाबा के घर में आते हैं, उसी दिन हमको आत्मा का परिचय मिलता है, आत्मा के सातों गुणों के बारे में पता चलता है। तो समझ लिया ना, और क्या समझना है? जो रोज रोज बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, क्यों कहते हैं बाबा रोज रोज? क्या हमने समझा नहीं है? समझा है ना? फिर बाबा रोज क्यों कहते हैं, हमें क्यों स्मृति दिलाते हैं? समझना माना देखना, समझना माना देखना। कैसे? उसका अगर एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि आज मान लो कि कोई व्यक्ति को हम कहेंगे कि भाई फलाने व्यक्ति के साथ तुमने ये बात किया था, तो वो क्या कहता है? एक मिनट, एक मिनट। फिर वो कहता है वो व्यक्ति मिला तो था, उससे ये बात हुई, ये बात हुई, ये बात हुई, लेकिन ये बात तो हुई नहीं है ना। फिर जैसे ही कहा कि ये बात नहीं हुई, तो क्लियर हो गया उसके मन में भी कि मैंने ये बात किया, ये बात किया, ये बात किया इतना समय में, और ये बात मेरी उससे नहीं हुई है। ठीक इसी तरह क्या तुम समझते हो कि तुमने सही में ये बात नहीं किया? समझते हो? तो समझा किसको कहा जाता है? बाबा कई बार हम बच्चों को कहते, बच्चे सीढ़ी का चित्र है, सीढ़ी के चित्र को अच्छी तरह समझो। समझो माना देखो, अंतर चक्षु से उसको देखो, उसके ऊपर चिंतन करो। इसलिए आज बाबा ने कहा, सर्विसेबल बच्चे विचार सागर मंथन अच्छा करते हैं। क्यों कहा? क्योंकि वो हर बात को देखते हैं कि शंकराचार्य को अगर समझाना है तो हमें ये पॉइंट समझानी, ये पॉइंट समझानी, ये पॉइंट, तो उस चीज को हम अंदर में जैसे रखते हैं, देखते हैं, और देखने का अभ्यास हमारा बढ़ता है। इसलिए कई बार कई लोग किसी को समझाते हैं, भाई देखो ये रास्ता ऐसे जाता है, फिर वहां से वहां जाना है, वहां से वहां जाना है, ऐसे बताते हुए फिर लास्ट में क्या कहेंगे? समझा? समझा तुमने कि मैंने जो कहा, ये रास्ता का जो बताया तुम्हें कि भाई ये पहले सीधा जाना, फिर राइट में जाना, फिर लेफ्ट में जाना, फिर ऐसे, समझा? कोई भी बात समझा करके पूछते हैं, समझा यानी देख लिया, तुमने विजुअलाइज कर लिया, देख लिया, यथार्थ। तो आत्मा समझना माना अंतर चक्षु से आत्मा को देखना, और वो सातों गुणों का स्वरूप देखते हुए उस ऑरा को फील करना, वो ऑरा को वाइब्रेट करना, वो गुणों को वाइब्रेट करना चारों ओर, उसको कहा स्वयं को आत्मा समझ करके फिर बाप को याद करना। उसको कहते आत्म अभिमानी स्थिति। तो देही अभिमानी किसको कहेंगे? सारा दिन तो हम योग में नहीं बैठते हैं, क्योंकि बाबा ने हमें कर्म योगी बनाया है। तो जब कर्म करना है तो कर्म कैसे करना चाहिए? कोई रटना तो है नहीं, मैं आत्माओं में आत्माओं में आत्माओं, लेकिन जो आत्म स्थिति के समय हमने सातों गुणों के वो प्रभा मंडल को विकसित किया, तो जब कर्म में आते हैं तो वो वाइब्रेशन हमारी हर इंद्रियों से प्रवाहित होने चाहिए। जैसे बाबा ने कुछ समय पहले मिसाल दिया था कि बच्चे कोई बहुत मीठा बोलता है, मृदुभाषी होते हैं, तो कई लोग कहते हैं ये तो जैसे देवता है, इसके मुख से तो फूल झड़ते हैं, इसके मुख से रतन झड़ते हैं, उसका कोई शब्द ऐसा नहीं होता जो किसी को हर्ट करे, किसी को पत्थर के जैसे लग जाए दिल में, ऐसा नहीं है। तो देही अभिमानी मतलब अपनी देह की कर्मेंद्रिय के ऊपर अपना संपूर्ण अधिकार हो, और जो आत्म स्थिति में बैठ करके हमने योग अभ्यास किया, आत्मा के सातों गुणों को विकसित किया, वो गुण के जो वाइब्रेशन है वो हमारी कर्मेंद्रिय द्वारा प्रवाहित होने चाहिए, हमारे व्यवहार में, हमारे कर्म में। उसको कहा जाता है देही अभिमानी स्थिति, कि जो कर्म करो बहुत प्यार से करो। जैसे आज बाबा ने याद किया कि जो ब्रह्मा भोजन बनाते हैं वो ब्रह्मा भोजन भी बहुत प्यार से बाबा की याद में बनाते हैं, तो वो प्रेम के वाइब्रेशन उसके अंदर जाते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि देवताएं भी ब्रह्मा भोजन के लिए तरसते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो शुद्ध बाबा के प्रेम के जो वाइब्रेशन समाये हुए हैं वो देवताओं को भी नहीं मिलता है। दैवी दुनिया के अंदर वो प्रेम स्वरूप है लेकिन परमात्मा प्रेम स्वरूप नहीं है, तो परमात्मा प्रेम के वाइब्रेशन इस भोजन के अंदर है, इसलिए देवताएं भी उसको तरसते हैं। तो परमात्मा प्रेम के वाइब्रेशन को हम उसमें प्रवाहित होने देते हैं। साइलेंस में रहते हैं तो साइलेंस का प्रवाह हर कर्म करते हुए जब फैलता है तो देखने वाले को भी ये प्रेरणा मिलती है, जैसे देवता के रीति से कार्य कर रहे हैं, फरिश्ता है एकदम साइलेंस में, किसी के साथ व्यर्थ की बातें नहीं, चिंतन नहीं, कितना शांति से प्रेम से ये कार्य कर रहा है, तो वो फील होता है, वो वाइब्रेशन हर एक को फील होता है। जिस तरह अशुद्ध वाइब्रेशन फील होता है इसी तरह शुद्ध वाइब्रेशन भी महसूस होता है। इसीलिए तो कितनी भी बड़ी भीड़ हो लेकिन अगर दो चार ब्राह्मण भी वहां होते हैं तो वहां वो अलग से दिखाई देते हैं। लोग कहते हैं अच्छा ये बीके हैं, है ना, चेहरे से भी वो वाइब्रेशन फील होता है, उनकी दृष्टि से भी वो वाइब्रेशन फील होता है, उनके शब्दों से भी वो वाइब्रेशन फील होता है। हर कर्म जैसे उनका साक्षात्कार कराता है परमात्मा का, कि क्या परमात्मा की शिक्षाएं हमने जीवन में पाई है, तो उसको कहते हैं देही अभिमानी स्वरूप। क्योंकि अधिकतर हम सारा दिन कर्मयोगी अवस्था में होते हैं, और जब कर्मयोगी अवस्था में है तो कर्मयोगी स्टेज ही ये सातों गुणों का स्वरूप वाली स्टेज है, जो हर कर्म से वो वाइब्रेशन प्रवाहित होते हैं। इसीलिए अगर कोई ब्राह्मण गुस्सा करता है तो देखने वाले कभी कभी क्या कहते हैं, ये मेडिटेशन करते हैं, इसको ईश्वर पढ़ाते हैं, ये भगवान के बच्चे हैं, क्यों ऐसे टोंट मार देते हैं, इसका मतलब ये देही अभिमानी है ही नहीं। क्योंकि देही अभिमानी अगर है तो वो उस समय गुस्सा कर नहीं सकता है, उनका हर वचन शांति वाला ही होगा, प्रेम वाला ही होगा। कोई अगर सामने दुख देने वाला है, कोई अत्याचार कर रहा है, तो वहां पर भी वो इतना ईश्वर की याद की सकाश दे करके उस आत्मा को शांत कर देता है। ये ताकत है उसके पास, ये शक्ति है। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम्हें किसी से बहस करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी से लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, तुम उस वक्त आत्म स्थिति में स्थित होकर के उसको प्रेम से दृष्टि दो। जैसे ही प्रेम से दृष्टि देंगे उसका स्वरूप बदलना ही है, बदल जाएगा। ये ताकत है देही अभिमानी स्थिति में। और इसीलिए बाबा की ये संडे की मुरली, कल की मुरली जो आएगी उसमें बाबा ने बहुत अच्छी बात, ये बात स्पष्ट की है कि बच्चे तुम्हें ज्ञान का खजाना इतना अनंत मिला है, और उस ज्ञान के खजाने को जब तुमने धारण किया है, ज्ञान स्वरूप हो गए हैं, तो तुम ये नहीं कह सकते ये बदलेगा तो मैं बदलूंगा, क्योंकि हमारा स्लोगन है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, या स्व परिवर्तन से दूजे का परिवर्तन। हमारा स्लोगन ये तो नहीं है विश्व परिवर्तन से सो स्व परिवर्तन, ये तो नहीं है ना। स्व से विश्व है, स्व से दूजे हैं, दूजे से स्व है, ये तो है नहीं कि ये बदले तो मैं बदलू, ये तो स्लोगन ही उल्टा कर दिया। तो ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसने ज्ञान के खजाने को अपने अंदर जमा किया है, वो ज्ञान उसके प्रैक्टिकल कर्म में व्यवहार में जब प्रवाहित होते हैं तो वो अपने व्यवहार से दूसरों को भी परिवर्तन कर देता है। इतना ही नहीं, लेकिन सामने वाली आत्मा को बंधन मुक्त भी कर देता है। अर्थात मान लो कि कोई बंधन वाली आत्मा है, उसके ऊपर बहुत बंधन है, तो बाबा ने कहा जीवन मुक्त बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव वो खुद इस जन्म में कर सकते हैं, बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, अगर वो ज्ञान युक्त हो करके सारे घर में वाइब्रेशन फैलाते हैं तो देही अभिमानी हो करके, क्योंकि वो निस्वार्थ वाइब्रेशन हर कोई को महसूस होता है, उसको कहा देही अभिमानी स्थिति। अच्छा, अभी तीसरी है विदेही स्थिति और अशरीरी स्थिति, दोनों एक ही है या अलग है? विदेही और देही अभी विदेही और अशरीरी स्थिति एक ही है या अलग अलग है? अलग अलग है, क्या है, कैसे अलग है बताओ। विदेही किसको कहेंगे और विदेही किसको कहेंगे, अशरीरी किसको कहेंगे? फरिश्ता स्टेज उसको विदेही कहेंगे और विदेही, ये शब्द तो आपने कई बार भक्ति मार्ग में भी सुना कि राजा जनक विदेही था। तो विदेही किसको कहा जाता है कि जो सारा राज कारोबार संभालते हुए सारा कर्म करने के बावजूद भी जहां आसक्ति न आए, मेरेपन का भाव न आए, मैंपन का भाव न आए, उसको कहा जाता विदेही। तो देही अभिमानी स्टेज ही हमें विदेही स्टेज तक भी पहुंचाती है। पहला अभ्यास हमारा देही आत्माभिमानी, आत्माभिमानी से देही अभिमानी बनना सहज है। कर्म करते हुए भी आत्मा के सातों गुणों को हम प्रवाहित करें, लेकिन उससे धीरे धीरे विदेही स्टेज की ओर जाना है। और विदेही माना कर्म करते हुए आसक्ति उसमें न हो, मेरा है, मैं हूं, ये मैं और मेरापन जहां समाप्त हो जाता है, उसको कहा जाता है विदेही। क्योंकि मैंपन या मेरापन ही हमारे इस अस्तित्व को ले आती है, फिजिकल जो कॉन्शियसनेस है उस अस्तित्व में अपने आप को ले आती है। तो विदेही माना हर कारोबार करने के बावजूद भी, जो बाबा कहते हैं कोई आपकी तारीफ करे महिमा करे तो क्या कहो, करण करावन हार करारा, मैं तो निमित हूँ। देही अभिमानी वाले के सामने ये बात नहीं आएंगी, वो सोचेगा कि हाँ मेरे को ये करना है। लेकिन जब विदेही स्थिति की ओर आगे बढ़ते हैं तो हर कर्म में जितना परफेक्शन आता जाता है, हर कर्म योग युक्त ज्ञान युक्त होकर के करते हैं हम, तो जरूर है कि वो कर्म बहुत अच्छा होगा और उस कर्म को देखकर लोग महिमा भी करेंगे। विशेषता के आधार पर कर्म करते हैं तो लोग महिमा तो करेंगे, अच्छा कर्म होगा तो क्यों नहीं महिमा करेंगे। महिमा तो करेंगे, लेकिन जैसे ही कोई महिमा करते हैं तो उस समय ये मेरी विशेषता है ये नहीं कहना, लेकिन ये बाबा के द्वारा दी गई विशेष, तो सबका ध्यान बाबा के तरफ खिंचवाना, ये है विदेही स्थिति। जिस तरह राजा जनक के लिए कहा गया है कि राजा जनक जब राज कारोबार में व्यस्त थे तो एक बार एक महात्मा जी आए, एक सन्यासी आए, और उसने राजा जनक से कहा कि हमने सब कुछ छोड़ दिया, सन्यास धारण कर लिया, फिर भी हमारा मन विचलित होता है, हमने आसक्तियों को जीता नहीं है, अनासक्त नहीं हुए हैं, कैसे हम माने कि आप ये सब वैभव के बीच में रहते हुए अनासक्त हो, कैसे माने हम? तो उस समय राजा जनक ने कहा, प्रश्न तो बहुत अच्छा है, ऐसा करो मेरा थोड़ा कारोबार है, वो कारोबार को मैं निपटा कर आता और फिर आपके साथ बैठकर ज्ञान चर्चा करूंगा, लेकिन तब तक आप क्या करेंगे? तो तब तक आप एक काम करो, मेरा महल देख कर आओ, अवलोकन करके आओ। कहा ठीक है। तो काम महल में बहुत सुंदर कारीगरी है, आप देख कर आओ। कहा ठीक है। तो वो जाता है महल का दर्शन करने के लिए, महल देखने के लिए। तो राजा ने कहा, एक मिनट, जिस तरफ आप जा रहे हो कारीगरी बहुत सुंदर है, लेकिन वहां लाइट नहीं लगी है, इसलिए आप ये दिए की ज्योत को लेकर के जाओ ताकि आप देख सको। कहा ठीक है, लेकिन याद रखना वहां खिड़की दरवाजे भी नहीं लगे हैं और हवा की दिशा भी वही है, तो आपको दिया बुझ जाएगा तो आप कुछ देख नहीं पाएंगे, तो ध्यान रखना पड़ेगा। कहा ठीक है। तो वो दिए को लेकर के जब महल देखने जाता है, चारों ओर महल को देखता है, देख करके आता है सारा कारीगरी आदि, तब तक राजा भी फ्री होकर के आ जाता। राजा ने पूछा, महल देख कर आए? कहा देख के आए। कहा कैसा लगा आपको? कहा बहुत सुंदर था। तो कहा ध्यान कहाँ था? तो कहा ध्यान तो दिए पर था कि दिया बुझ नहीं जाना चाहिए, तो देख रहे थे लेकिन ध्यान दिए पर था, न्यारा न्यारा होकर, जो आज के वरदान में बाबा ने कहा न्यारा प्यारा और उपराम, न्यारा प्यारा, कर्म करना है ना, निज स्वरूप में भी स्थित होना है, निज धाम को भी याद करना है, लेकिन न्यारा प्यारा और उपराम, तो इसको कहा जाता विदेही। जहां कर्म कर रहे हैं लेकिन मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये भाव से भी परे हो गए बाबा। बाबा ने कई बार कहा है, बाबा बाबा करते चलो, बाबा बाबा के तरफ इशारा करो, आप हर एक को बाबा की याद दिलाओ, ये है विदेही स्थिति। देह में रहते हुए भी मेरा कुछ नहीं, इसको कहा विदेही। तो देही अभिमानी में भी कर्म कर रहे हैं, लेकिन वहां हम अपने सातों गुणों की एनर्जी का प्रवाह उसमें भर रहे हैं, लेकिन विदेही में उससे भी परे चले जाते हैं। हर कर्म करते हुए कोई अगर पूछता है कि ये कर्म आपने बहुत सुंदर किया, कैसे किया, तो याद दिलाओ बाबा करण करावनहार, बाबा करा रहा है, मैं निमित होकर के कर रहा, ये है विदेही स्थिति। ध्यान ऊपर रहे, ध्यान ऊपर रहे हमारा, और इस तरह से जीवन जब जीने लगते हैं तो वैभव हो, सब कुछ हो, लेकिन सबके बीच में रहते हुए भी हम कमल फूल समान न्यारे और प्यारे सहज रह सकते हैं, है ना, न्यारे और प्यारे सहज रह सकते हैं। तो इसको कहते हैं विदेही स्थिति। और चौथी स्थिति जो है, जिसको कहा अशरीरी बीज स्वरूप स्थिति, कि जहां मैं बीज स्वरूप बन जाऊं और शरीरी देह भान से भी ऊपर, देह के विदेही स्थिति से भी ऊपर, एकदम अशरीर, शरीर के भान से परे और बीज स्वरूप मैं आत्मा बीज हूं, बीज रूप बाबा के साथ हूं। तो जैसे बीज के अंदर सारे वृक्ष का जो एनर्जी है वो समाया हुआ है, सारे वृक्ष का जो पोटेंशियल है, जो ताकत है, वो समाई हुई है एक बीज में ही। जिस बीज के प्रस्फुटित होने से ही सारा वृक्ष बाहर निकल आता है, तो सारे वृक्ष की पोटेंशियल जिस बीज के अंदर है, ऐसे मैं आत्मा भी बीज स्वरूप और 84 जन्मों की पोटेंशियल मुझ आत्मा बीज में भरी हुई है। तो भरपूर स्थिति, किससे भरपूर? सर्व खजानों से भरपूर। सर्व खजाने में कौन से खजाने आते? एक तो ज्ञान का खजाना है ना, अथाह ज्ञान है, तीनों कालों का ज्ञान है, वो ज्ञान का खजाना है हमें। दूसरा, जैसे कहा कि सर्व शक्तियों का खजाना है हमारे पास, सर्व गुणों का खजाना है, और कौन सा खजाना है? सर्व वरदानों का खजाना है, और बाबा के साथ के सर्व संबंधों के रस का, अनुभव का खजाना है, सारी विशेषताओं का खजाना बाबा से हमें मिला है। तो कितने खजाने? वो सारे खजाने की पोटेंशियल आत्मा बीज में समाई हुई है। इसलिए जब बीज स्वरूप में स्थित होते हैं और बीज रूप बाबा से जब हम कनेक्ट होते हैं, तो उस समय जो बाबा की सकाश आत्मा को मिलती है, उससे कई जन्मों के पाप कर्म दग्ध हो जाते हैं, कई जन्मों के। एक मिनट भी अगर आप बीज स्वरूप स्थिति में स्थित रहे और बीज रूप बाबा की याद में है, वो बिंदी खिसकी नहीं उस बीज स्वरूप में ही, तो एक मिनट में भी कई जन्मों के पाप कर्म दग्ध हो जाते। वो है ज्वाला स्वरूप स्थिति, के ज्वाला का काम करता है वो बीज। इतना पावरफुल है कि उसमें से जो ज्वाला प्रकट होती है, वो कई जन्मों के हमारे पाप कर्म को दग्ध कर सकते, भले थोड़े समय के लिए होती है, वो ज्यादा समय नहीं रहती है, क्योंकि बीज स्वरूप में स्थित होना इतना आसान नहीं है। लेकिन बार बार अभ्यास करने से, एक सेकंड, दो सेकंड, तीन सेकंड अभ्यास करते 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 उस एक मिनट तक भी आप पहुंचते हैं, तब जाकर के इसमें जन्म जन्मों के हमारे विकर्म दग्ध हो जाते हैं। इसलिए अभी हम जो योग करते हैं, इस योग की स्थिति में विकर्म बनते नहीं है, लेकिन जो विकर्म हुए हैं वो दग्ध भी नहीं होते हैं। इस समय जो हम योग करते हैं उसमें प्राप्ति होती है, प्राप्ति का अनुभव करते हैं। जैसे बाबा से वर्षा प्राप्त होता है, वरदान प्राप्त होता है, तो ये प्राप्ति का अनुभव, और ये प्राप्ति से हम भरपूर होते जाते हैं, वो पोटेंशियल जैसे हमारे अंदर भर रहे हैं, ये अभी के योग की स्टेज है। लेकिन जब भट्ठी में हम तपस्या करते तो उस समय तपस्या के अंदर जब एकदम बीज स्वरूप में आ जाते हैं, पहले आत्मअभिमानी होकर के, विदेही होकर के, फिर अशरीरी होते हुए एकदम निराकारी स्वरूप में आकर के स्थित हो जाते, वो बीज रूप स्वरूप में आ जाते हैं, तब जाकर के बीज रूप बाबा से जो सकाश मिलती है, उससे हमारे कई जन्मों के विकर्म, कई प्रकार के बंधन जलने लगते हैं, जल जाते हैं। इसीलिए बाबा कई बार कहते, बच्चे बहुत काल का अभ्यास चाहिए। बहुत काल का अभ्यास का मतलब ये नहीं है कि ज्ञान में 25 साल या 50 साल होने चाहिए, लेकिन जितना समय हम बैठे योग में, आधा घंटा बैठे, तो हमारा योग कितना लगा? 5 मिनट लगा, 10 मिनट लगा, बाकी समय बुद्धि कहाँ बाहर भटके, भले ज्ञान में ही रमण करती रही, तो वो योग तो नहीं गिना जाएगा। विचार सागर मंथन चल रहा था तो उसको योग तो नहीं गिना जाएगा, कि विकर्म विनाश होने वाला योग नहीं कहेंगे। तो इसीलिए आधा घंटे बैठे हम, बहुत काल कितना हुआ? 5 मिनट का अनब्रेकेबल योग रहा, या 10 मिनट का रहा, या 15 मिनट का रहा, या पूरा आधा घंटे का रहा, ये देखने का होता है। उसको कहते हैं बहुत काल। बहुत काल का मतलब ज्ञान में ज्यादा साल नहीं, लेकिन बाबा जो हम बच्चों को लिफ्ट देता है, बाबा की एक मुरली में मैंने पढ़ा कि संगम युग पर जब बाबा आकर हम बच्चों को लिफ्ट देता है, तब दुनिया में भी लिफ्ट का क्रिएशन हुआ है। लिफ्ट का क्रिएशन पहले नहीं था, बाबा ने हम बच्चों को लिफ्ट देना शुरू किया, और हम बच्चों की स्थिति जैसे जैसे ऊंचे तबके पर आगे बढ़ती गई, तो दुनिया में भी लिफ्ट का इन्वेंशन हुआ है। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को लिफ्ट दे रहा है इस समय, और उस लिफ्ट देते हुए जैसे जैसे हम उस स्टेज में पहुंच जाते हैं, और जितना समय उस स्टेज में स्थित हो सकते हैं, उसको कहते हैं बहुत काल। 5 मिनट भी अगर स्थित हो सके तो ये भी बहुत काल ही है। आधा घंटा पूरा हम बाबा के प्यार में समाये रहे, खोए रहे, तो ये बहुत काल हुआ, साल की बात नहीं। इसीलिए बाबा कई बार कहते, बच्चे लास्ट में आने वाले भी फास्ट जाकर फर्स्ट नंबर में जा सकते हैं। फर्स्ट नंबर में क्यों जा सकते? क्योंकि जितना वो अपने अभ्यास को बढ़ाते जाते हैं, जितना वो हर कर्म करते हुए भी देही अभिमानी विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाते हैं, तो जब योग में बैठते हैं तब उनको सहजता से लिफ्ट मिलती है अशरीरी होने की, बीज रूप अवस्था में जाने की, और उससे हमारे विकर्म बहुत सहज जल जाते हैं, तो सजाएं उतनी कम हो जाती है। अगर विकर्म ज्यादा रहे तो सजाएं भी अधिक होगी। इसलिए बाबा कहते, कई बार कई लोग बहुत साल से हैं लेकिन अभी तक भी कुछ समझा ही नहीं, और जो लास्ट में आने वाले वो समझ करके फास्ट जाकर फर्स्ट नंबर में आ सकते हैं। तो इसीलिए गेट ओपन है, 108 की माला में जाने के लिए भी गेट ओपन है, हर एक के लिए, कोई भी जा सकता है। अभ्यास को बढ़ाना है, और यही हमारी तपस्या, ये अभ्यास ही हमारी तपस्या है। तपस्या माना ऐसे नहीं कि जो ऋषि मुनियों को दिखाया कि भाई खाना पीना छोड़ करके धूप हो, सर्दी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, वहां बैठ गए सो उठते ही नहीं। हठ नहीं करना है, हठ नहीं है हमारा, लेकिन हमारी तपस्या ऐसी है जो दृढ़ संकल्प वाली है, जो अभ्यास को बढ़ाने वाली है, ये हमारी तपस्या है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे तुम बच्चों को ऐसी तपस्या करनी है जो विकर्म का खाता सारा भस्म हो जाए। विकर्म और पाप कर्म में भी अंतर है। विकर्म छोटे छोटे होते हैं, है ना? कई लोग होते हैं ना, कई ब्राह्मणों को देखो, बिना मतलब के भी झूठ बोलते रहते हैं। उसको पूछो अगर, भाई क्यों झूठ बोले, क्या मिला आपको ये झूठ? कुछ नहीं, बस उसको क्या फर्क पड़ा, जान करके उसको क्या फर्क पड़ना था, कोई फर्क नहीं। लेकिन तुम्हें तो फर्क पड़ा, तुमने जो झूठ बोला तो छोटा छोटा विकर्म तो इकट्ठा होता गया, क्यों बोलना चाहिए, सच बोल दो। नहीं, हमने अगर झूठ बोला उसको क्या फर्क पड़ा, उसको नहीं पड़ा, तुमको तो पड़ा ना, ये देखो पहले। तो विकर्म माना छोटे छोटे पाप कर्म, छोटे छोटे छोटी छोटी कमजोरियों को लेकर के पाप कर्म होना, है ना। जैसे कई बार किसी ने हमको टाइम दिया, भाई इतने बजे आ जाना, और वो व्यक्ति पहुंचा ही नहीं और हमको वेट करना पड़ा, तो क्या होता है, चिड़चिड़ापन आने लगता है, गुस्सा आने लगता है ना। अरे उतनी देर अगर मुझे वेट करना पड़ा है, अच्छा है टाइम मिला है, तपस्या करूं अपनी। लेकिन नहीं, वो टाइम जो दिया था उस पर नहीं पहुंचा, इतना टाइम मुझे वेट करना पड़ा, तो इतना गुस्सा होने लगते हैं, इतना गुस्सा आ जाता है। तो क्या कहेंगे इसको, देही अभिमानी भी नहीं है, आत्मा अभिमानी भी नहीं है। अरे इतना समय मिला तो कमाई कर लो, कमाई कर लो ना, उसने अगर टाइम आपको दे दिया तो। तो इसीलिए छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, झूठ बोलना, किसी को टोंट मार देना, किसी को कमेंट दे देना, ये सारे विकर्म है। और पाप कर्म जो है वो अकेला नहीं होता है, अकेला नहीं होता है, वो किसी न किसी के साथ होता है। जैसे काम विकार में जाना तो किसी का साथ है। तो कहते हैं ये पाप है, ये महापाप। आज जैसे बाबा ने कहा, आत्मघात करना ये महापाप है, है ना, महापाप है। तो जो महापाप है कि जहां दो व्यक्ति के साथ कनेक्टेड, क्योंकि वहां हिसाब किताब क्रिएट होते हैं, हिसाब किताब बनने लगते हैं, और वो हिसाब चुकाना ही पड़ता है, आज नहीं तो कल उसको चुकाना ही पड़ेगा, या धर्मराजपुरी में सजा खा करके भी चुकाना पड़ता है। इसलिए बाबा कहे, ऐसे ही हिसाब किताब मत बनाओ, किसी भी अशुद्ध आत्मा के साथ भी। इस दुनिया के आत्मा, खास करके बाबा दान पर विशेष जोर देते कि कोई भी अपवित्र आत्मा को ऐसा दान न दो जिससे वो अशुद्ध कार्य में लगाए और आपके साथ का बहुत गहरा हिसाब क्रिएट हो जाए, कि पाप कर्म बनता है। तो पाप कर्म से बचे रहना, और पाप कर्म को दग्ध करना पड़ता है, या तो बीज रूप अवस्था से, या तो सजा खा करके ही उसको चुकाना पड़ता है, या उसकी भोगना भोगनी पड़ती है, कि वो व्यक्ति द्वारा हमें बहुत दुख, कष्ट, अत्याचार अपने ऊपर होने लगता है, तभी चुकतु होगा वो पाप कर्म। तो इसीलिए ऐसे पाप कर्म से तो हम छूट गए, बाबा के बच्चे बनते ही। लेकिन जो छोटे छोटे विकर्म होते हैं वो भी चुकाना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो इसीलिए सावधान, खबरदार हो जाए कि ऐसा कोई भी पाप कर्म या विकर्म हमसे न हो, ऐसे हिसाब किताब हम क्रिएट ही न करें जो फिर चुकाना पड़े, या उसकी सजा भोगनी पड़े, या यहाँ पर कर्म भोग के रूप में उसको चुकाना पड़े। ठीक है, तो इसीलिए सावधान। तो ये चार स्टेजेस जो है, आत्म अभिमानी, देही अभिमानी, ये बेस है विदेही और अशरीरी बनने के लिए, वो स्थिति जिसमें हमारे विकर्म समाप्त होते हैं, पाप कर्म समाप्त होते हैं। इसीलिए कई बार बाबा मुरली में भी कहते हैं कि बच्चे तुम्हें कमल फूल समान बनना है, फिर कभी बाबा कहते बच्चे रूहे गुलाब बनना है। क्या पहले बनेंगे, कमल फूल पहले बनेंगे या रूहे गुलाब पहले बनेंगे, क्या बनेंगे? कमल फूल पहले बनना है, रूहे गुलाब, दोनों में क्या अंतर है? कमल फूल जो है उसकी गृहस्थी नीचे बहुत है, बहुत बड़ा विस्तार है, और ऊपर में कमल फूल न्यारा प्यारा है, उसके ऊपर कोई कीचड़ की बूंद भी उछालता है तो नीचे गिरा देता है, इतना कोमल है। कमल का फूल अगर तोड़ भी लेते हैं, तोड़ने के बाद अगर उसको रख दे, मुरझा जाएगा, लेकिन पंखुड़ियों से अलग नहीं होगा, पंखुड़ियां लास्ट तक भी जुड़ी रहेगी, लेकिन रूहे गुलाब, गुलाब जब संपूर्ण खिल जाता है और उसको ऐसे घुमाओ खाली तो उसकी पंखुड़ियां भी निकल जाती है और बीच का बूर रह जाता है, वो है अशरीरी स्थिति, वो है अशरीरी स्थिति। तो हमें भी कमल पुष्प से रूहे गुलाब यानी अपनी अशरीरी कोई भी पंखुड़ियां भी अटैच नहीं होनी चाहिए, इतनी भी आसक्ति नहीं हो। कमल फूल में फिर भी एक जिम्मेवारी है, अनेक प्रकार के जिम्मेवारी से कनेक्टेड है, उसको छोड़ नहीं पाते हैं, लेकिन कमल फूल से रूहे गुलाब जरूर बनना है कि जहां एक भी पंखुड़ियां भी कनेक्टेड ना हो, सारी पंखुड़ियों से भी फ्री हो करके एकदम अशरीरी खाली बीच का बूर रह जाए, ये है अशरीरी स्टेज। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।